پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی صالح معاشرہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ ہیلدی سوسائٹی ہے، اس میں دو تعلق بہت اچھے ہونے چاہیے. نمبر ایک اللہ اور بندے کا تعلق، اور دوسرا بندے اور بندے کا تعلق. اللہ کے تعلق کی بنیادیں نمبر ایک توحید، پانچ وقت کی نماز، اللہ کے لیے روزہ رکھنا، زکوٰۃ کر دینا، کافی سارا پیسہ لگا کر حج اور عمرہ کرنا، عبادات. جس سوسائٹی میں لوگ اذان سن کر گھر میں نہ بیٹھے، الصلاۃ خیر من النوم کی پکار کے بعد وہ بیٹھنے کی بجائے وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، یاد رکھیے کہ اس سوسائٹی میں اللہ کے تعلق کو کوئی کمزور کر ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیادیں ہمیں دن میں پانچ نمازوں اور باقی عبادات کی صورت میں ملتی ہیں. آپ کا میرا سب سے پہلا کام تطہیر سوسائٹی یا سوسائٹی کو پاک کرنے کا کیا ہے؟ کہ ہم لوگوں کے اللہ کے ساتھ تعلقات کو درست کریں. پہلے تو اپنے ہی کریں. الحمدللہ ہمارے دن رات ڈفرینٹ کورسز پلان ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہتی ہوں کہ دیکھیں، کسی بھی کورس بچوں کا ہے یا بڑوں کا ہے، شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے، آپ اس کا اینڈ پروڈکٹ یہ ضرور ڈالیں کہ جو ساتھی وہاں سے اٹھے، نمبر ایک اس کو اللہ سے محبت ہو جائے. پیار پہلی چیز ہے، لو اللہ. دوسری بات ہے اللہ کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جائے. تیسری بات ہے اگر وہ کوئی یانگ بچوں کا کورسز ہے تو بچے اپنے پیرنٹس سے بہت قریب ہو جائیں، ہر روز ایک ٹپ دیں ان کو، جا کے ماما کو یہ کہنا ہے، امی کے ساتھ یہ، ابو کے ساتھ یہ کرنا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ بچے کے مینرز بڑے پیارے ہو جائیں، دروازہ کیسے کھولنا ہے، بیگ کیسے رکھنا ہے، اونچی نہیں بولنا، قریب جا کے بات کرنی ہے. یقین کریں آپ امیجینیشن میں پورے ملک کو چھوڑ دیجئے، صرف آپ اپنے گھر کو لے آئیں. آپ جتنی سسٹرز بیٹھی ہیں اور اسی طرح جو باقی بھی ہمارے گھر ہیں، کم و بیش ہم سب ریپریزنٹ ایک دوسرے کو کرتے ہیں نا، آپ کا گھر ہے. آپ تصور میں لائیے، چلیے آپ کو ایک ڈریم دکھاتی ہوں. آپ ہیں ماشاء اللہ، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے ساس ہوں گے، سسر ہوں گے، چلے گھر میں ایک آدھ نند بھی ہیں، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم لے لیتے ہیں، اور آپ کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں. اب آپ دیکھیے، صبح ہوتے ہی فجر کی اذان سے آپ کے گھر کے اندر روشنیاں جل گئیں. ٹھیک ہے نانی دادی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ فجر سے پہلے بھی بیٹھی ہوں گی، فجر سے آپ کے گھر میں ایک ہلچل شروع ہو جائے. یقین کریں میں جو درد محسوس کرتی ہوں نا اپنی ان جگہوں پہ آ کے، ہماری فجریں مردہ ہو گئی. فجر کے وقت ہمارے گھر قبرستان کا منظر دکھاتے ہیں. اور مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ آپ صرف ایک چیز کہیں، جسٹ ون تھنگ، جس سے ہمارے اس ملک کے پرابلم اور کاموں کا نہ ہونا اور ٹریفک کا رش، شور، گندگی یہ ختم ہو، ایک چیز تو میں کہوں گی سونے اور جاگنے کو ٹھیک کر لیں. ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، ٹائم مینج نہیں ہم کر پاتے. وجہ اس لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دن کا آغاز ہی نافرمانی سے کرتے ہیں. آپ سوچیے جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی، پہلا ہی حملہ تو شیطان کا اس پہ کامیاب ہو گیا. اور آپ کہتے ہیں جب جنگیں ہوتی ہیں نا تو جو ساتھی یا جو سائڈ جو ہوتی ہے وہ شروع میں ہارنے لگ جائے نا تو پھر کمی اٹھی ہے. جیسے کھلاڑی ہے، شروع میں دو تین کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تو مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے. فجر نہ پڑھنا اپنے سارے دن کو ضائع کرنا ایک جملے کی بات ہے. اب آپ ہیں، آپ کا 6-7 سال کا بچہ، آپ کیوں سوچتی ہیں کہ یہ 8-10 سال کا ہوگا پھر اس کے بعد یہ چیزیں دیکھے گا؟ اپنے گھر سے اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کرتی ہیں کہ دیکھیں میاں صاحب، پہلے کی بات پہلی تھی، اب بچہ ہو گیا، یہ بچہ اب آپ کو دیکھتا ہے، آپ اس کی انگلی پکڑ کر اس کو مسجد لے جائیں، یہ کہہ سکے کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے اپنے باپ کو مسجد میں جاتا دیکھا ہے. آپ یقین کریں اگر آئیڈیل سوسائٹی ہے، فجر پہ سارے گھر والے اٹھے ہوئے ہیں، مرد بچے مسجد جا رہے ہیں، لڑکیاں عورتیں گھر بیٹھی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں مل کے. چلو کچھ نہیں، اور تو اس وقت تھوڑا سا سادہ اپنا قرآن پڑھ لیا، دعائیں پڑھ لی ہیں، اذکار کر لیے، کتنی پیاری صبح ہو گئی. آپ سوچیں ذرا وہ وقت. پھر اس کے بعد اگر دوبارہ نہ سوئیں، ہمارا ایک بہت بگ ایشو ہے، ہم فجر کے بعد سو جاتے ہیں، ہے ایسا کہ نہیں؟ اور کب سوتے ہیں؟ جس دن بچوں نے اسکول نہ جانا ہو. اسکولوں کا اللہ بھلا کرے، وہ 7 بجے بلا لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اب نیند تو کھلی گئی ہے، اب یہ چھٹیاں نئی نئی گزری ہیں نا، کیا گھروں کا حال تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، ہر بندہ لاسٹ ہے، ویکینڈ پہ کیا ہو رہا ہے. آپ صرف اپنے گھر کی اصلاح شروع کر دیں. اور یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ آپ کو قرآن سے ملتی ہیں. मैं अक्सर सोचती हूँ कि कितनी कीमती ज़िंदगी हैं हमारी जो ज़ाया कर रहे हैं। आप सोचें, एक साल पीछे पलट कर आपकी फैमिली का कोई था जो अब नहीं है, नहीं आएंगे वापस, हो पुकारें, बोलें, शोर करें, हमारी जगह ही कोई आएगा, हम नहीं वापस आएंगे। आज उनका अमल का पर्चा ख़त्म हो गया, अब वो नई दीन समझ सकते, अब वो कुरान नहीं सीख सकते, अब वो अपने घर के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं ला सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप मौजूद हैं। तो क्या पता चला, सोसाइटी में पहले अल्लाह से ताल्लुक़ ठीक हो, जब अल्लाह से ठीक हो गए ना तो ला मुहाला फिर बंदों से भी ठीक होगा। मसलन आप देखिए कि आप चाहते एक नया पाकिस्तान, लोगों ने आजकल एक जुमला मारूफ के नया पाकिस्तान बनाते हैं, चले हम भी एक नया पाकिस्तान बना लेते हैं। लोग ऊपर से शुरू करना चाहते हैं, हम उसकी रूट्स को शुरू करते हैं। अल्लाह के नबी ने जिस चीज़ के ज़रिए से अरब के हालात बदले थे, अल्लाह ने 3 दफ़ा कम अज़ कम कुरान पाक में उसका तज़किरा किया है कि अल्लाह का नबी वो है जो युअल्लिमुहुमुल किताब वयुज़क्कीहिम, अल्लाह का नबी उनको किताब सिखाता, वल हिकमा और हिकमत सिखाता, उनका तज़किया करता। कुरान एक ऐसा हमारे पास रिसोर्स है, एक ऐसा हमारे पास खूबसूरत अल्लाह ताला का तोहफा है कि जिसको अगर आप सही शक्ल में इम्प्लीमेंट कर दें, नंबर एक अल्लाह से ताल्लुक़ अच्छा, दूसरी बात बंदों से ताल्लुक़ अच्छा, तीसरी बात ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाता है। मैं इस दुनिया में क्यों आई, मेरी नज़र में कुरान पढ़ने के बाद आप फारिग नहीं रह सकते, आप फारिग नहीं रह सकते। सुबह मेरी किसी से बात हुई, हमारी साथी आलमोस्ट हम इर्द गिर्द इधर, मैंने सुना कि वो भी पाकिस्तान में आए हुए, कोई भी हमारे साथी हैं, तो मुझे कहने लगी कि हम तो पाकिस्तान में आकर ठुस हो जाते हैं, आप कैसे सफ़र कर लेती हैं। तो मैंने एक जुमला बोला, मैं पहले से सोच के आई होती हूँ कि मैंने ये काम करना है, और वल्लाह ही अगर मैं ना सोच के आऊँ तो मैं तो सबसे ज़्यादा बेकार बंदा बन जाऊँ। समझ आ रहे, हम जब तक सोचेंगे नहीं, प्री प्लान नहीं करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। हालात के रुख में चलो देखते हैं, मैं अक्सर लोगों से पूछिए अच्छा कल क्या प्रोग्राम है, वो सुबह उठेंगे तो देखेंगे, तो मैंने कहा माइंड ना करें, मैं आपको भी बता दूं आप नहीं करेंगे ये काम, होगा भी नहीं आपसे, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं है। ज़िंदगी पिघल रही है बर्फ़ की तरह, जब तक हम अपनी सोसाइटी में सबको एक लेवल पर नहीं लाते। आप देखिए ना, उलमा इल्म वाले, अवाम, जवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत, ये सब गाड़ी के छोटे छोटे पुर्जे हैं, इन सब के ठीक होने से हमारी गाड़ी ने चलना है। गाड़ी में एक छोटा सा पुर्जा ख़राब होता है, गाड़ी नहीं चलती। तार देख लीजिए कितनी देर लग गई इसको सेट करते हुए, इनको एक बटन समझ नहीं आ रहा था, नहीं चल रहा था। आपके वही माइक है ना, आपके मेरे कुछ तार हिले हुए हैं, हमारे इस मुल्क के कुछ पुर्जे ढीले हुए हैं, और उसकी वजह आप हुक्मरानों को बुरा कहें, आप गुलकारों, अदाकारों, मीडिया और सोशल मीडिया और नेट को कहें, मैं किसी को नहीं कहती, मैं कहती हूँ हमारा कसूर ये है कि हमने लोगों को इस कुरान से दूर किया है। लोग सोचते कुरान पढ़ेंगे तो सवाब होगा, इंशाल्लाह होगा, लेकिन कुरान पढ़ने के बाद जो सबसे पहले चीज़ होती है ना, वो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। मैं किसी को दुखी देखूँ तो मैं मशकूक हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ इसका कोई चक्कर है, मुसलमान ऐसा दुखी नहीं होता, कोई वजह है, कोई कमी है इसमें। किसी को मैं परेशान देखूँ, हौल रहे हैं, लोगों के साथ ताल्लुक़ है, लोगों से अपने कामों की दरख्वास्तें कर रहे हैं, मैं कहती हूँ नहीं, उधर कोई गड़बड़ है, उधर बिगड़ा हुआ मामला तभी दूसरे के पास आना है ना। तो जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला के साथ रखेंगे अपने आप को, उतना दुरुस्त होगा। फिर एक छोटी सी बात आपको और बताऊँ कि आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 जनवरी 2018, यानी आप कह लीजिए कि इस नए साल में हम शुरू हो चुके हैं। कल मैंने लेक्चर जहां दिया उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम सेव किया, तो मुझे एहसास हुआ कि 2018 का पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर सेव हुआ है। अभी पता नहीं साल में अल्लाह हमें क्या तौफीक देगा, हम कितने कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर आप और मैं चाहते हैं, पहली बात आप ख़ुद से पूछें, हम असल में दूसरों पर डाल देते हैं, हर दूसरे के कंधे पर तलवार रखने वाली बात है। आप अपने आप से पूछिए मैं क्या करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। कुछ कहेंगे बच्चों की शादियाँ हो गई, उसके बाद मकसद तो नहीं है। आप कहेंगे छोटा घर है बड़ा हो जाए, मिल गया फिर क्या करेंगे। देखिए अगर सब कुछ मिलने के बाद हम कामयाब है तो लोग हमें 2-2.5 फुट की कब्र में क्यों डाल के आते हैं। मुझे तो अपनी उस कब्र की रोशनी के लिए कुछ करना है, और मैं ये सोचती हूँ कि जब भी नेकी का कोई मौका आता है ना, जैसे वो हमारे यहाँ उर्दू में अखबारों में एक छपा होता है एक लफ्ज़ था, असामियाँ खुली हुई हैं, ٹینڈرز ہیں، اپرچونیٹیز ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد نئی اسامیاں کھلتی ہیں۔ اسی طرح لکھ لیں یہ بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حالات تھے، اس نے ابو بکر کو پیدا کیا، ان حالات کی پیداوار عمر فاروق تھے، علی تھے، خدیجہ کو نیکیوں کا موقع مل گیا۔ جس طرح نیکی کے آنے پہ ابو جہل کو دشمنیوں کے موقع مل جاتے ہیں نا، مخالفتوں کے، اور عبداللہ بن ابی کو سازشوں کے جال بننے کا موقع مل جاتے ہیں نا، انہی موقعوں پہ کچھ لوگوں کا سابقون الاولون میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ جیسے اس دور میں ہوا تھا نا، یہ آج بھی ہوگا۔ ہر جگہ نیکی کا نیا قدم، نئی سیڑھی، پہلی اینٹ، یہ اصل میں میرے آپ کے چناؤ کا وقت ہوتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے بہت گلیمر ہوتا ہے، مثلا میں مثال دیتی ہوں، چلے دنیا کی حساب سمجھے، مارکیٹنگ میں، مارکیٹ میں کوئی نیا پروڈکٹ آتا ہے، اب تو وہ مارکیٹنگ پہ پیسہ زیادہ لگاتے ہیں، چیز پہ تو اتنا لگاتے ہی نہیں، تبھی تو ہزار والا جوڑا 5,000 میں لیتے ہیں، وہ کپڑے کی قیمت تھوڑی ہے۔ کاٹن تو آج بھی وہی ہے جو پہلے بھی بکتی تھی، کسان نے بیچارے نے کوئی اس میں کوئی ڈالنا تو نہیں شروع کیا، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ 1,000 والا جوڑا 5,000 پہ کیوں چلا گیا؟ یہ مارکیٹنگ، یہ ماڈلز، یہ سوشل میڈیا، یہ بڑے بڑے بینر، یہ پوسٹر ہے، وہ تو پہلے ہی مشہور کر دیتے ہیں کہ لوگ راتوں کو پہلی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں کہ آج اوپننگ ہے، ایسے ہی ہے نا، کیوں؟ کہ انہوں نے چیز کو لانا ہے۔ لیکن دیکھیے، مارکیٹ میں جب کوئی نئی چیز آتی ہے، شروع میں نہیں پتہ ہوتا، آپ فرسٹ ٹائم ایک مسالہ خرید کے لے آئیں، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسا ہوگا، چلے دیکھتے ہیں۔ اب جب آپ نے ڈالا، کھانے میں پکایا، مزہ بھی، ٹیسٹ بھی، خوشبو بھی بڑی اچھی، آپ کو بھی مزہ آیا، جنہوں نے کھایا وہ ضرور پوچھیں گے، ہم کھانے کے دوران پورا وقت ترکیبیں پوچھتے رہتے ہیں، اور گھر والا آدھی بتاتا ہے، آدھی کوئی نہیں بتاتا، پھر ہم کہتے ہیں میں نے بھی بنایا تھا، ویسا تو کوئی نہیں بنا، تو آپ اندر کہتے ہیں میں بھی کوئی اتنی بیوقوف تھوڑی ہوں کہ سارے تمہیں بتا دوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بلی نے شیر کو یا شیر نے بلی کو سب کو سکھا دیا، درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا۔ تو خیر، ہر ایک کا ایک اپنا فیلڈ ہوتا ہے، لیکن آپ فیل کرتے ہیں نا، نئی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ پھر جب شہرت ہو جاتی ہے، پھر جب اس کے بعد اس کی شہرتیں ہوتی ہیں، تو لوگ مانگتے ہیں جا کے وہ چیز۔ یہ جو گمنامیوں کے دن ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے میرے امتحان کے دن ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، کامیابیوں کے لیے آنا اتنا خطرناک ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آپ اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ کامیابی تو اپنی جگہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے تکبر آتا ہے، رونت آتی ہے، بڑائی آتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں وہ مثالیں قائم کر کے دکھائیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں، اور میں کن کے بارے میں سوچتی ہوں، آپ گیس کریں، جنہوں نے سیرت پڑھی ہے، دو ہستیوں کا مجھے بہت خیال آتا ہے۔ مکہ کے دور کو دیکھوں تو بی بی سمیہ، آپ کو تھا کہ اسلام کی پہلی شہیدہ ایک عورت تھی، حضرت سمیہ مکی دور کے بیچ میں ہی شہید کر دی گئی، ان کے شوہر بھی شہید کر دی گئے، یاسر ان کا نام تھا۔ اب یہ شوہر بیوی تو مکہ کے ظلم و ستم کے دور میں مارے گئے، کیا انہوں نے ہجرت مدینہ دیکھی یا کی؟ چلے حبشہ ہجرت کی، نہیں کی، مدینہ ہجرت کی، نہیں، بدر کا مارکا ان کی زندگی میں آیا، احد آئی، اور ساری جنگوں سے گزرتے ہوئے تبوک آئی، کچھ بھی نہیں آیا۔ تو آپ ذرا بی بی سمیہ کی روح سے پوچھئے، بی بی سمیہ سناؤ، آپ کامیاب ہیں کہ ناکام؟ میں صرف مثال دے رہی ہوں کہ روح سے پوچھ نہیں سکتا، لیکن صرف امیجینیشن میں لائے کہ بظاہر تو وہ ایک ناکام عورت دنیا سے گئی نا، اس نے تو اسلام کی کوئی ایک فتح بھی نہیں دیکھی، وہ تو مارے کھا کھا کے دنیا سے چلے گئے، تو وہ تو ناکام ہوئی، وہ کہیں گی میں ناکام ہو گئی۔ لیکن کیا بی بی سمیہ ناکام لوگوں میں لکھی جاتی ہیں؟ آج بھی جب ہسٹری لکھی جاتی ہے، تو ان کا نام پہلی صفحے اول کی شہیدہ کا نام آتا ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، آپ اور میں آج کے اس دور میں، اور ریئلی یہ جو 14th century چل رہی ہے اس وقت، اس میں میں سوچتی ہوں کہ جن کی دین کی نشر و اشاعت، قرآن کی پروموشن، اللہ کے نبی کے سنتوں اور ان کے طریقوں کام کرنے میں کوششیں، انشاءاللہ یہ سابقون الاولون ہے۔ آج کے دور میں تھوڑا کرنے والے بھی انشاءاللہ کل بہت کچھ لے جائیں گے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آئیں گے بعد میں، لیکن تم سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کیوں، وہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں۔ کرتے کراتے آپ نے کہا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ اسی رستے کے راہی ہوں گے، اور یہ وہ آج کا دور ہے۔ آج اسلام ایک ڈاؤن پروڈکٹ ہے، جیسے آپ کہہ لیجیے اپنی زبان میں کہ اسلام کا بھاؤ گرا ہوا ہے۔ جب چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ سیل لگ جاتی ہے۔ یہ جو آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ سیل میں آپ زیادہ لے آئے، وہ اصل میں وہ اپنے اسٹاکس کلیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اسلام کا سودا سیل پہ ہے، لے نہیں رہے لوگ۔ آپ اٹھائیں گی نا، آپ کو سستا ملے گا، एक ही जगह दो ले लें, दो लीमिया तो तीन ले लें, थोड़े दिन गुजरेंगे, देखिएगा इंशाल्लाह। आज ये जो 70-80 साल आगे का खेल है, अब ये जो सदी है ना, ये 14th अभी चल रही है, 38-39 अभी ये महर्रम में बदल भी गई। यकीन कीजिए ये सदी पूरी होनी दे, हमारा इस्लाम ऐसा नहीं होगा। आप मैं नहीं होंगे यकीनन, अल्लाह को पता, हमारी नस्लों में से भी इंशाल्लाह कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपके पोते नवासे और उनके बाद के लोग होंगे। इतना उरूज होगा दुनिया में इस्लाम का, आप हदीसें पढ़े, मैं अपने पास से नहीं कह सकती, आप जाके किताबुल फितन पढ़िए बुखारी का, नबी सल्लम की पेशन गोइयाँ सुनिए। अब ज़मीन इस वक्त पूरी प्रिपेयर्ड है, यानी जैसे लोग कहते हैं कि कोर्ट इज़ रेडी, बस अब प्लेयर्स की ज़रूरत है, और प्लेयर्स आप और मैं हैं। अल्लाह ने पूरी दुनिया के दुश्मनों को अब एक जगह पे जमा करना शुरू कर दिया है, जहाँ से इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें आ रही हैं, और वो अपने काम में मगन हैं। हमें उनको कुछ कहने सुनने की छेड़ने की तो ज़रूरत नहीं है, हमें इस वक्त करना क्या है कि वही काम करें जो नबी सल्लम ने किया। और आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लम का जो तरीका था काम करने का, आप पहले अफराद तैयार करते थे। सबसे बड़ी किसी की कमोडिटी, किसी की सबसे बड़ी दौलत साथी होते हैं। लोग कहते हैं मदरसा बन गया, कितने फ्लोर, कितनी जगह, मैं कहती वो तो दीवारें हैं, वो तो चूना है, वो तो फ्लोरिंग है, वो तो पैसे से बनता है, जज्बों से ही पैसा लगता है। लेकिन अब ये 6 मंजिला भी बिल्डिंग बन जाए तो क्या होगा? असल चीज़ यहाँ काम करने वाले अफराद। मस्जिद नबी तो टूटी हुई थी, छत भी टपकती थी जब बारिश होती थी, नीचे मट्टी होती थी कि नमाजें पढ़ने वालों के माथों पे कीचड़ लग जाता था। आज की मस्जिद नबी को जाके देखिए और उस दौर की मस्जिद नबी देखिए, कोई बात बनती है? फ़र्क क्या था? उसके अंदर बैठे हुए लोग। याद रखिए हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इस वक्त अगर इस स्टॉक में कोई माल डालेगा, इधर शेयर कोई डालता है अपना, उसका वो हिस्सा है, उसका वो काम है। और मैं आपको अपने तजुर्बे से बता सकती हूँ, अल्लाह जानता है, अल्लाह ने मुझे शायद घाट घाट का पानी इसीलिए पिलवाया। मुझसे अगर आप पिछले 20 साल की मेमोरीज ले लेना, मेरी ज़ुबान पे, मेरे हाफजे में, मेरे फ़ोन में उन्हीं लोगों के नंबर रहते हैं जो शुरू में काम करने वाले होते हैं ऑनलाइन। मेरा अमेरिका से भी अगर मैं सिलसिला शुरू करूं, पाकिस्तान का पीछे भी कर दूं, जब पाकिस्तान से शादी हुई बाहर गई तो सेटअप जो शुरू हुआ, आज भी माशाल्लाह आज हमारे सिर्फ एडमिन्स के ग्रुप में 150-200 लोग होते हैं, सिर्फ एडमिन्स क्लोज सर्कट। लेकिन मुझे वो 10-15 नाम, उनकी जगह बोलिए, वो सब कुछ याद होते हैं कि जो शुरू में हमारे साथ थे। नए एडमिन्स के मुझे नाम नहीं पता, नए कोऑर्डिनेटर्स के मुझे नाम नहीं पता, हालांकि हर लिस्ट आती है, हर चीज़ आती है, मैं देखता जाऊँ, मैं दिन में सारा दिन वही देखती रहूँ। लेकिन मैं क्या सोचती हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरू में कोशिशें की थी, बुनियाद कभी नहीं बदली। बुनियादों में अगर आपका मेरा नाम डल जाता है, अगर मेरा आपका हिस्सा बुनियादों में डल गया ना, तो याद रखिए फिर हमारी नस्लें भी इस काम के अंदर खप जाएंगी तो कम नहीं होगा। आप देखें ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनके बच्चों सारे बच्चे मुसलमान हो गए, उनकी बीवी मुसलमान, ठीक है, उम्मे रुमान थी जो हज़रत आयशा की माँ थी, कुतैला थी उससे पहले की बीवी, फिर अब्दुल्ला एक बेटा था, अब्दुर्रहमान एक बेटा था। हज़रत आयशा ने तो इस्लाम की गोद में आँख खोली, फिर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा थी, अबू बकर के सारे बच्चे मुसलमान, बीवी भी मुसलमान, दूसरी बीवी भी मुसलमान। उमर पर आ जाइए, हज़रत उमर खुद मुसलमान, बाप अबू कुहाफा मुसलमान हो गए थे एंड पे, वो के नाबीना हो चुके थे उस वक़्त। बेटे देख लीजिए, उमर के सारे बच्चे मुसलमान, उमर की बेटियों में हफ्सा ज़ौजा रसूल बन गई। क्या समझ आई? जिनको अल्लाह दीन के उन अंधेरों से निकालता है ना, कि जो रोशनी करने में मददगार होते हैं, उनकी नस्लें संवर जाती हैं। आप जितनी मर्जी दुआएं करवाएं लोगों से, काबा के इमाम से कहिए कि ज़रा मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दें, वो दुआएं नहीं सुनी जाएंगी जो आप अल्लाह के काम करते हैं। मैं एक मिसाल दे देती हूँ आपको, आपके घर में बेल बजती है, दरवाज़ा खोलते हैं, दो खवातीन अंदर आती हैं, एक कहती है बाजी कुछ दे दो, खाना नहीं, आटा नहीं, रोटी नहीं, चावल नहीं, मांगती है कुछ, ठीक है। दूसरी जो है वो अंदर आते ही आपका वहाँ छोटा सा बच्चा खेल रहा है उसको देखने लग जाती है, बैठती है, उससे बातें करती है, प्यार करती है, बाजी मैं इसको नहला दूं, बाजी मैं इसको खिला दूं, कुछ भी कर दे। आप दोनों का फर्क देखते हैं कि एक ने आते ही अपनी जरूरतें पेश कर दी और दूसरी आपके बच्चे की टेक केयर करने लग गई। आप सोचेंगे मैं काफी दिन से ढूंढ तो रही थी कोई हेल्पर मिल जाए, ये अच्छी लग रही है। आप वो पहली है ना, उसको 100 का नोट दे के रुख्सत कर देंगे, जाओ भाई इतना ही है माफ करो। दूसरी है ना, आप उसको सारा दिन देखेंगे रखे, फिर आप कहते काम करना, वो कहेगी जी जरूर क्यों नहीं, चलो मेरे पास आ जाओ। आप मुझे बताएं, जो आपके बच्चे को देख रही है, टेक केयर कर रही है, आप उसको खुशी से रखेंगे, खुशी से देंगे, या वो जो मांगने लग गई जो आपके बच्चे की हिफाजत करेगी। बस इसको ले आइए अब उस पॉइंट पे जहाँ मैं लाना चाहती हूँ। कोई आपके 1 साल 2 साल के मासूम से बच्चे को देखे तो आपको उस पर इतना प्यार है कि मांगने वाले से ज़्यादा उसको दे। तो जब अल्लाह के दीन को आप उठाते हैं, याद रखिए इस्लाम आज रोता बिलखता बच्चा, ये लग पाता है हमें इसकी चीखें नहीं मिलती, हमें आज इसकी वो पुकार नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि हमारे इर्द के दरवाजे बहुत हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में इतना डिस्ट्रैक्शन कर लिया, हमारे अपने बच्चे ही नहीं ख़त्म हो रहे। अब उनकी शादियाँ, अब उनकी मंगनियाँ, अब उनके ब्याह, अब उनके बच्चों के कपड़े, अब उनके आने उनके जाने, अब उनका एक का घर, अब दूसरे का घर, अब उसकी टोपी, अब उसकी जूती, अब उसकी, मैं बुरा नहीं कह रही, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन जितने मेरे नबी के बच्चे थे, अगर हमारे उतने बच्चे होते और जितने उनके घर थे उतने हमारे होते, तो फिर नबी ने जो किया कम अज़ कम वो तो ना कर पाते। कभी आपने देखा, मैं अक्सर सोचती हूँ, और सीरत तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, पता नहीं आज क्यों जहन उधर चला गया, क्योंकि जब दीन का काम शुरू होगा, जब तत्हीर माशरा की बात होगी, जब पाकीज़ा नस्लों की बात होगी, तो मैं और आप अपना ताल्लुक़ नबी से जोड़ेंगे तो बात समझ आएगी। आप कहते हैं वेस्ट में, मैंने अभी शुरू में मिसालें दी, बड़ी सफाई हैं, बड़ी सुथराई हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उसी सोसाइटी में हर घर में नाजायज़ बच्चा भी पल रहा है। उसी सोसाइटी में एक औरत है और उसके साथ 4 किस्म के बच्चे हैं, मर्द कोई भी नहीं है, तो वो उसका ड्रॉबैक है। और मैं ये जुमला बहुत बोलती हूँ कि ये सोसाइटीज़ अपने फैमिली सेटअप से टूट रही हैं। अब वहाँ होम स्वीट होम का नाम ख़त्म होता जा रहा है, आज वो दुखी सोसाइटीज़ हैं, उधर बच्चे माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते। ये रिसेंटली अभी का वाक है कि बच्चा घड़ी दे के, टाइम दे के माँ बाप को कह रहा है सिर्फ मुझे 18 का हो जाने दें, क्योंकि वहाँ का एक रूल है बाहर का, 18 साल तक का बच्चा आपके साथ रहेगा, 18 के बाद एक दिन का भी हो जाए और वो कहे कि आई डोंट वॉन्ट टू स्टे विद यू, तो लीगली खिलाने पिलाने, दर सहने, रातों को जागने, पढ़ने पढ़ाने के बाद आपके पास हक नहीं है कि आप उस बच्चे को रोके, वो पुलिस कॉल कर सकता है। अब आजकल के जो इश्यूज़ हैं वो तो आपको सुनाने का फ़ायदा ही नहीं, आप है ही नहीं उधर, वो वहाँ वालों के सुना लें तो बड़े हैं, लेकिन यकीन करें आप अभी सिक्योर हैं। यहाँ तक हालात हो चुके हैं कि आप अपने बच्चे को वहाँ उंगली नहीं लगा सकते। छोटा बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, अगर वहाँ जाता है स्कूल में और उसको इधर छोटा स्क्रैच दिखता है तो टीचर पूछती है ये क्या है, और वो सिर्फ अगर अपनी तोतली जुबान में कह देना मामा, तो वो वहाँ स्कूल वाले, अब लॉ बन चुके हैं कि माँ बाप को नहीं कॉल करना, पुलिस को, बच्चों की पुलिस होती है वहाँ, बारनेबान कहते हैं उसको, उनको कॉल करेंगे कि लगता है कि इसकी माँ ने इसको मारने की कोशिश की है और बच्चा बोल रहा है बुलाओ, और वो बाप काम पे, माँ बेचारी कहीं दफ्तर में, किधर है, कोई काम कर रही है, स्कूल में, इधर है, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, और उन दोनों की पेशी करके जी बताएं आपने बच्चे को मारा। पहला नंबर जो कहते हैं आप बच्चों को 3-4 साल की उम्र में स्कूल में जाकर जो सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारी अम्मी अब्बू ने तुम्हें कुछ कहा तो इस पे कॉल करना। ये गवाहियाँ मौजूद हैं, आप तो आज़ाद शहरी हैं। मैं यहाँ बैठती हूँ, सबसे पहले गाड़ी में बैठते हाथ सीट बेल्ट पे जाता है, फिर मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, अगर मैं सीट बेल्ट बांध लूँ तो मेरे साथ वाला कहता है मैं पता तू बाहर से आई है, यानी इतनी शो मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग सोचते सीट बेल्ट बांधने से बंदा शो मारता है, चलो भी ठीक है, नहीं मारते फिर हम, आप तो इतने आज़ाद हैं। यकीन करें यहाँ की फिज़ाओं में इतनी आज़ादी है, इतनी इस फिज़ा में एक अल्लाह की रहमत है, लेकिन लाइन शकर तुम लाजीद को, अगर माशरों की तदखीर और अखलाकी पाकिजगी के लिए कुरान आम हो जाए ना, इस शहर को जितना पानी की ज़रूरत है, जितना इधर से गंदगी उठाने की ज़रूरत है, इतना कुरान के पानी को आम करने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ बातों से नहीं होगा। मैं कहती हूँ वेस्ट में इस वक्त जितने दुनिया के असबाब हैं, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ वहाँ अगर आप दीन फैलाएं, उसके नतायज यहाँ काम करने से 10 गुना अच्छे निकलते हैं। मैं अपने इकरार करती हूँ पूरी मोहब्बत के बावजूद कि मुझे लगता है कि मैं शायद अल्लाह ने मेरे ब्लड में रखा था कि मैं बाहर काम करूँ, मैं यहाँ होती तो शायद अभी भी कुछ ना कर रही होती, वहाँ मुझे आसान लगता है। वहाँ मेरा माइंड चलता है, सेट चलता है। यहाँ आकर तो 10 किस्म के 7 चीज़ों को लेके हम चलते हैं। वजह क्या है कि हमारा माहौल साज कर नहीं है, माइंड नहीं बने हुए। आप इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको करप्शन से पाक, इसको यहाँ की गंदगी से पाक, और सिर्फ उसके अंदर ज़रूरत है कि आप लोगों को दीन के इल्म से करीब कर देते हैं। फिर आप देखते हैं कि इस मुल्क जैसा मुल्क भी कोई नहीं है। दो काम कर लीजिए, ज़ाहरी गंदगी को ख़त्म कर दें। चले हम बाशोर लोग हैं, यहाँ बैठे हुए माशाल्लाह काफ़ी, सिर्फ आप और मैं, इतने ही लोग, और जो बात मैं इंशाल्लाह हमारे साथ सुनेंगे या सुन रहे हैं। मैंने इस मुल्क को गंदा नहीं करना, मेरा क्या किरदार है? आप देखिए ना, आपने अपने इस घर को, मिसाल है कि आपका एक नाल का घर है, ज़ाहिर है कि आपका पूरा घर आपकी कस्टडी में है ना। आप उसके लॉन्च को भी देखती हैं, आप बाहर लॉन को भी देखेंगी, कभी क्लॉजर्स को खोलते हैं, यानी आपकी ज़िम्मेदारी है। बाथरूम में अगर पानी गिर रहा है, पूरा आपका घर है ना। आप एक काम कर लीजिए कि अगर आप अपने घर के इनसाइड को देखती हैं ना, थोड़ा सा एक मरला जगह बाहर की भी आप ले लें, आपके घर का बाहर का टुकड़ा, एक बात। दूसरी बात है, सफ़र करने के दौरान टॉयलेट्स यूज़ करते हुए, होटलों में, मस्जिदों में, मैंने गंदगी नहीं फैलानी। अपने साथ छोटे छोटे शॉपर रखिए, खाना खाया पिया गंदगी उसमें डालें। बिलीव कीजिए कि ये चीज़ हमारे नबी की सुन्नत थी। वो नबी जो एक औरत, जो काफिर औरत थी, उसके घर का कूड़ा फेंकता था, आज उसकी उम्मत पकड़ के दूसरों के दरवाज़ों के आगे अपने कूड़े रखती है। आप क्या कहते हैं इसको? क्या ये मुल्क साफ नहीं हो सकता? हो सकता है। प्ले योर पार्ट। और मैं एक जुमला बड़े शौक से बोलती होती हूँ, जो करना है मैंने करना है। कैसे? अपने ऊपर ले ले मसलत। इस मुल्क को साफ करना है, मैंने करना है। इस मुल्क को पुरसकून करना है, मैंने करना है। बस लोग कहते हैं एक मेरे करने से क्या होता है, तो आप देखिए एक जूं को आप सर में छोड़ दें, सिर्फ एक जूं, एक हफ्ते की कोशिश के बाद देखिए वो आपका जीना धोबर कर देगी। मुसलसल स्लो एंड स्टडी विन द रेस। इस मुल्क की एक एक कोने को, इसकी एक एक चीज़ को आपको साफ़ करने की ज़रूरत है। शऊर की कमी है। मैं जब भी PIA पे आती हूँ, कहीं से भी आऊँ, तो एक चीज़ मैंने जब बहुत अरसे के बाद मैं PIA में बैठी, तो मैंने बिग डिफरेंस फील किया दूसरी एयरलाइन से, बैठने से लेकर जहाज़ के चलने, और बीच में भी वो बेचारे रिकॉर्डिंग्स प्ले कर रहे थे। ये मुल्क, ये जहाज़ आपके मुल्क की अमानत है, इसको सही रखने में, इसको साफ़ रखने में हमारे साथ तावन करें। वो बेचारे बोल बोल के बताते हैं, सीटों पे कुछ ना लिखें, इसके कवर ना फाड़ें, बाथरूम के वो जो टिश्यू पेपर हैं ये वो है, उनको ख़राब ना करें। और बिलीव मी, शायद ही कभी आपको वॉशरूम में जाकर वहाँ सोप भी मिले। मैं सोचती हूँ कमी किस चीज़ की है? शऊर की कमी है। अक्लमंद हैं हम, अल्लाह की रहमत से ऐसा ब्रेन किसी के पास शायद ही कम हो। और याद रखिए, मुस्लिम ब्रेन से ज़्यादा स्मार्ट ब्रेन कोई नहीं होता। काफिर ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला लेगा, सितारों से आगे कमंदे डाल लेगा, लेकिन उससे आगे रब को नहीं देख पाता। सूरत आल इमरान के आखिरी रुकू में अल्लाह ताला रोज़ आपको मुझे क्या कहते हैं? इन नफ़ी खल्क़ समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़ अल्लैल वन नहारी लायातिन लिउलिल अल्बाब। कि मुसलमान जो होते हैं ना, वो गौर व फिक्र भी करता है और तदब्बुर भी करता है। तो शऊर पैदा करने के लिए ज़रूरत है कि हम एक ज़ाहरी सफाई का शऊर पैदा करें। ठीक है, ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आदत डालने की ज़रूरत है। करें कैसे? आप एक घर से दो लोग आए हैं ना, तो आपस में बैठ के घर जाके बात करें। मैं कोई गड़बड़ करने लगूं तो तुमने मुझे बताना है, तुम करो तो मैं बताऊंगी। और अगर आप अकेली आई हैं तो घर जाकर आज थोड़ा सा मौका देकर, थोड़ा सा रग़बत का शौक का अंदाज़ रखें। बच्चों से कहें, बेटा अपने कपड़े आपने खुद उठाने हैं, आपने अपनी लॉन्ड्री खुद करनी। आपको पता है कि 50% घरों में, बाहर के मुल्कों में, बच्चे अपनी लॉन्ड्री खुद करते हैं। कब करते हैं? छुट्टी के दिन, संडेज को। हमने तो माशाल्लाह अपने 18 साल के बच्चों को अभी बेबी बनाया हुआ है, लुक में भी माँ ही डालेगी तो वो बेबी खाएगा, ऐसे ही है ना। देखिए, सफाई करने से नहीं होती। आप सफाई कर दें, अभी पीछे से आए को गन डाल दें, सफाई रखने से होती है। ठीक है, तो जहाँ भी आप हैं इसका शोर बेदार करें। बहुत लंबा टॉपिक है, इसको फिर किसी वक्त देख लेंगे। तखीर का, बाहर खुली जगह हैं, गंदी चीज़ें, दही बड़े हैं, मत खाएं। उनको बताएं हम नहीं खाएंगे। मुझे सबसे हैरत होती है, मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ, अव्वल तो मैं बाहर देखती कम हूँ, क्योंकि फिर जब किसी के घर जाओ तो कुछ समोसे खिलाए तो मुझे वो याद आ जाते हैं। सारी गाड़ियों की धूल पड़ती है ना, और खुले छज्जों में समोसे और रोल और फिश और बिरयानियाँ खुली पड़ी हैं और लोग ले लेके खा रहे हैं, तो कितना धुआं और कितनी मट्टी जाती है। तो ये सफाई की ज़रूरत है, इसको बाद में देखेंगे। आखिरी बात जिस पे इंशाल्लाह आपको आज फारिग करूँगी, और वो क्या है कि सोच की तकलीफ। याद रखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह से खूबसूरत कंडीशनर कोई नहीं है। जिस तरह ये दिल दिमाग को अंदर से हुब्बे दुनिया, हर्स, बुखल, इन चीज़ों से पाक कर देता है ना, कोई और चीज़ नहीं करती। चंद दिन पहले किसी ने एक वीडियो भेजी, सच्ची थी कि झूठी थी, जो देखा वो बता रही हूँ। उन्होंने बताया था कि क्या मुस्लिम सिर्फ खाने में हलाल चीज़ की फ़िक्र करते हैं। चाइना की कोई कंपनी थी, उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी कि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स मुस्लिम्स हैं जो पूरी दुनिया से आते हैं और चाइना से सामान बनवा के ले जाते हैं। वो कहते हैं जब वो आते हैं तो हमारे, चूँकि वो गेस्ट होते हैं और ज़्यादा कस्टमर भी हैं, तो हम उनके लिए हलाल गोश्त मंगवाते हैं इधर उधर से ढूंढ के। और वो कहते हैं हम शराब नहीं पीते, खिंजीर का गोश्त नहीं खाते। खाने में तो वो बहुत पिकी हैं, बट जब हम हमारे ऑफिस में बैठ कर डील करते हैं तो कारोबार में बड़ी खियानते हैं, हमें खुद सिखाते हैं, कम कर दें, क्वालिटी सस्ता दे दें, दिखाएंगे ये लेकिन पैकिंग में ये आएगा, सैंपल ये दे दें अच्छा वाला। उनका क्वेश्चन ये था, उस वीडियो का टॉपिक क्या था कि क्या मुस्लिम सिर्फ खाने में हलाल के पाबंद है, डीलिंग्स में नहीं? सोच बदलने की ज़रूरत है। उसके लिए मुझे लगता है जो पहली चीज़ है ना, वो नेमतों का शुक्र है। अल्लाह सुभान व तआला आपको मुझे जो भी नेमत दे उसका एहसास। जज़ाकल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।